संबंध पीछे के दो श्लोकों में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया गया है उसका प्रयोजन क्या है इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। नरूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्नथ संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनौ सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं है, क्योंकि इसका न तो आदि है न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। व्याख्या नरूपमस्येह तथोपलभ्यते। इसी अध्याय के पहले श्लोक में संसार वृक्ष के विषय में कहा गया है कि लोग इसको अव्यय कहते हैं और शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि सकाम अनुष्ठान करने से लोक परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में सुख रमणीयता और स्थायीपन मालूम देता है। इसी कारण अज्ञानी मनुष्य काम और भोग के परायण होते हैं और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है ऐसा निश्चय हो जाता है। दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक और 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। जब तक संसार से तादात्म्य ममता और कामना का संबंध है तब तक ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु भगवान कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि से संसार से अलग होकर अर्थात संसार से संबंध विच्छेद करके देखने से उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा उपलब्ध नहीं होता, अर्थात ये नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। नान्तो न चादिर नतसम प्रतिष्ठा। किसी वस्तु के आदि मध्य और अंत का ज्ञान दो तरह का होता है, देशकृत और कालकृत। इस संसार का कहां से आरंभ है कहां मध्य है और कहां इसका अंत होता है, इस प्रकार से संसार के देशकृत आदि मध्य अंत का पता नहीं और कब से इसका आरंभ हुआ और कब तक ये रहेगा और कब इसका अंत होगा, इस प्रकार से संसार से कालकृत आदि मध्य अंत का भी पता नहीं है। मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनी में तरह तरह की वस्तुओं को देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे तो वह उस प्रदर्शनी का आदि अंत नहीं जान सकता। उस प्रदर्शनी से बाहर निकलने पर ही वह उसके आदि अंत को जान सकता है। इसी तरह संसार से संबंध मानकर भोगों की तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसार का आदि अंत कभी जानने में नहीं आ सकता। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो साधन अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि हैं वे सब संसार के ही अंश हैं। यह नियम है कि कार्य अपने कारण में तो लीन हो सकता है पर वह उसको जान नहीं सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, ऐसे ही व्यष्टि इंद्रियां, मन बुद्धि ये समष्टि संसार और उसके कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकते। अतः संसार से मन बुद्धि शरीर से भी अलग होने पर ही संसार का स्वरूप ठीक ठीक जाना जा सकता है। वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम है। संसार का ये उत्पत्ति विनाश का प्रवाह ही स्थिति रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में विचार करें तो न तो उत्पत्ति है, केवल विनाश ही विनाश है। जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी नहीं रहता हो, ऐसे संसार की प्रतिष्ठा कैसी? संसार से अपना मानवा संबंध छोड़ते ही उसके लिए अंत हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मा में स्थिति हो जाती है। विशेष बात, इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका और नहीं लगा सकता है। संसार से संबंध रखते हुए तथा सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि मध्य और अंत को ढूंढना चाहे तो कोल्हू के बैल की तरह उम्र भर घूमते रहने पर भी कुछ आने का नहीं है। वास्तव में संसार के आदि मध्य और अंत का पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत तो संसार से अपने माने हुए संबंध का विच्छेद करने की है। संसार अनादि शांत है या अनादि अनंत है अथवा प्रतीति मात्र है, इत्यादि विषयों पर दार्शनिकों में अनेक मतभेद हैं। परंतु संसार के साथ हमारा संबंध असत है, जिसका विच्छेद करना आवश्यक है। इस विषय पर सभी दार्शनिक एक मत हैं। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय है संसार से प्राप्त मन बुद्धि शरीर इंद्रियां धन संपत्ति आदि संपूर्ण सामग्री को अपने और अपने लिए न माने और उसको संसार की सेवा में लगा देवे। सांसारिक स्त्री पुत्र मान बढ़ाई धन संपत्ति आयु निरोगता आदि जितने भी प्राप्त हो जाए, यहां तक कि संसार के समस्त भोग एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी उनसे मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है और सांसारिक भोग नाशवान है। नाशवान से अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है? अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, संसार को सुविरूढ़ मूलम कहने का तात्पर्य है कि तादात्म्य ममता और कामना के कारण यह संसार प्रतिष्ठा रहित होने पर भी दृढ़ मूलों वाला प्रतीत हो रहा है। व्यक्ति पदार्थ क्रिया आदि में राग ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ होता चला जाता है। जिन पदार्थों व्यक्तियों में राग ममता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है उनको मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लग जाता है। जैसे धन में ममता होने से उसकी प्राप्ति में मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं बड़ा धनवान हूं ऐसा अभिमान हो जाता है। धन के नाश से वे अपना नाश मानने लग जाता है। लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वे अन्याय पाप आदि न करने लायक काम भी कर बैठता है। फिर इतना लोभ बढ़ जाता है कि उसके भीतर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ कपट बेईमानी आदि के बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता। उसे यह विचार ही नहीं होता कि पाप से धन कमाकर मैं यहां कितने दिन ठहरूंगा। पाप से कमाया धन तो शरीर के साथ यहीं छूट जाएगा, किंतु धन के लिए किए गए झूठ कपट बेईमानी चोरी आदि पाप तो मेरे साथ ही जाएंगे, जिससे परलोक में मेरी दुर्गति होगी। इतना ही नहीं, मैं दूसरों को भी प्रेरणा करने लग जाता है कि धन के लिए पाप करने में कोई खराबी नहीं है, ये तो व्यापार है, इसमें झूठ बोलना ठगना आदि ये तो सब उचित ही है, इत्यादि इत्यादि। इस दुर्भाव का होना ही तादात्म्य ममता और कामना रूप मूलों को दृढ़ करना है। इस प्रकार के दूषित भावों के दृढ़ मूल होने से मनुष्य वैसा ही बन जाता है। 17वें अध्याय का 3रा श्लोक। ये तादात्म्य ममता और कामना रूप मूल अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से जमे हुए हैं कि पढ़ने सुनने तथा विचार विवेचन करने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते। साधक प्राय कहा करते हैं कि सत्संग चर्चा सुनते समय तो इन दोषों के त्याग की बात अच्छी और सुगम लगती है, परंतु व्यवहार में आने पर ऐसा होता नहीं है। इनको छोड़ना तो चाहते हैं पर ये छूटते नहीं है। इन दोषों के न छूटने में खास कारण है सांसारिक सुख लेने की इच्छा। साधक से भूल ये होती है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता है और साथ ही दोषों से भी बचना चाहता है। जैसे लोभी व्यक्ति विषयुक्त लड्डुओं के मिठास को भी लेना चाहता है और साथ ही विष से भी बचना चाहता है, ऐसा तो कभी संभव नहीं है। संसार से कभी किंचन मात्र भी सुख की आशा न रखने पर इसका दृढ़ मूल स्वतः ही नष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि तादात्म्य ममता और कामना का मिटना बहुत कठिन है। साधक की यह मान्यता ही इन दोषों को मिटने नहीं देती। वास्तव में तो ये स्वतः मिट रहे हैं। किसी भी मनुष्य में ये दोष सदा नहीं रहते, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, किंतु अपनी मान्यता के कारण ये स्थायी दिखते हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह इन दोषों के मिटने को कभी कठिन न माने। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, भगवान कहते हैं कि यद्यपि संसार वृक्ष के अवान्तर मूल बहुत दृढ़ है, फिर भी इनको दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है। किसी भी स्थान व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आदि के प्रति मन में आकर्षण या सुख बुद्धि या उनके संबंध से अपने आप को बड़ा तथा सुखी मानना, पदार्थों के प्राप्त और उनका संग्रह करने में प्रसन्न होना, ये इसी का नाम संग है। इसका न होना ही असंगता है और वैराग्य है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, साधारण वैराग्य और दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य को उपरति अथवा पर वैराग्य भी कहते हैं, पर माने श्रेष्ठ। वैराग्य संबंधी विशेष बातें। वैराग्य के अनेक रूप हैं जो इस प्रकार हैं। पहला वैराग्य धन मकान जमीन आदि पदार्थों से होता है। इन पदार्थों का स्वरूप से त्याग कर देने पर भी अगर मन में उनका महत्व बना हुआ है और ये भावना रहती है कि मैं त्यागी हूं, तो इस अभिमान के कारण वास्तविक वैराग्य नहीं है। अंतःकरण में जड़ पदार्थों का किंचन मात्र भी महत्व और आकर्षण न रहे, यही वैराग्य है। दूसरा वैराग्य अपने कहलाने वाले माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि परिवार से होता है। उनकी सेवा करने या उनको सुख पहुंचाने के लिए ही उनसे अपना संबंध मानना चाहिए। अपने सुख के लिए उनसे किंचन मात्र भी अपना संबंध न मानना ही बंधु बांधवों से वैराग्य है। तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीर से होता है। अगर शरीर से संबंध बना हुआ है तो समझना चाहिए कि संपूर्ण संसार से संबंध बना हुआ है, क्योंकि शरीर संसार का ही बीज अथवा अंश है। शरीर से तादात्म्य न रहना ही शरीर से वैराग्य है। तादात्म्य का नाश करने के लिए साधक को पहले मान प्रतिष्ठा पूजा धन आदि की कामना का त्याग करना चाहिए। इनकी कामना का त्याग करने पर भी शरीर के नाम में ममता रहने के कारण यश कीर्ति बड़ाई आदि की कामना रह जाती है। इसके कारण मरने के बाद भी अपने नाम की कीर्ति अपना स्मारक बनाने की चाह आदि सूक्ष्म कामनाएं रह जाती है। इन सब कामनाओं का नाश करना आवश्यक है। कहीं कहीं साधक के भीतर दूसरों की प्रशंसा सुनकर दूसरों की बड़ाई देखकर ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है, अतः इसका भी नाश करना आवश्यक है। उपर्युक्त कामनाओं का नाश करने के बाद शरीर में ममता रह जाती है। यह ममता का संबंध मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसी कारण मृत शरीर को जला देने के बाद भी हड्डियों को गंगा जी में डालने से जीव की आगे गति होती है। विवेक जागृत होने पर जड़ चेतन प्रकृति पुरुष या शरीर शरीरी की भिन्नता का ज्ञान होता है। कामना और ममता दोनों का नाश होने के बाद तादात्म्य या अहंता नष्ट प्राय हो जाती है। तादात्म्य का अत्यंत अभाव भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर होता है। जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, तब कामना ममता और तादात्म्य तीनों मिट जाते हैं। यही वास्तविक वैराग्य है। जिसके भीतर दृढ़ वैराग्य है उसके अंतःकरण में संपूर्ण वासनाओं का नाश हो जाता है। अपने स्वरूप से विजातीय पदार्थ शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से किंचन मात्र भी अपना संबंध न मानकर सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो, इस भाव का रहना ही दृढ़ वैराग्य का लक्षण है। यह इस रूप से जानने में आने वाले स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सहित संपूर्ण संसार को जानने वाला मैं कहलाता है। यह जो जानने में आता है वह दृश्य है, और मैं जो जानने वाला है वो दृष्टा है। दृश्य और दृष्टा कभी एक नहीं हो सकते, ये नियम है। इस प्रकार संसार और शरीर नष्ट होने वाले हैं और मैं स्वयं अविनाशी है। इस विवेक का आदर करते हुए अपने आप को संसार और शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करना ही असंग शस्त्र के द्वारा संसार वृक्ष का छेदन करना है। इस विवेक को महत्व न देने के कारण ही संसार दृढ़ मूलों वाला प्रतीत होता है। सांसारिक वस्तुओं का अत्यंताभाव अर्थात सर्वथा नाश तो हो नहीं सकता, पर उसमें राग का सर्वथा अभाव हो सकता है। अतः छेदन का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओं का नाश करना नहीं है, प्रत्युत उनसे अपना राग हटा लेना है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर अपने लिए तो संसार का सर्वथा अभाव हो ही गया, जिसे आत्यंतिक प्रलय भी कहते हैं। जो हमारा स्वरूप है ही नहीं तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं, उसी का ही तो त्याग माने छेदन करना है। हम स्वरूपतः चेतन और अविनाशी हैं एवं संसार जड़ और विनाशी है, अतः संसार से हमारा संबंध अवास्तविक और भूल से माना हुआ है। संसार से हम स्वरूपतः असंग ही हैं। पहले ही से जो असंग है वही तो असंग होता है, यह नियम है। अतः संसार से हमारी असंगता स्वतः सिद्ध है, इस वास्तविकता को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। संसार कितना ही सुविरूढ़ मूल क्यों न हो, उसके साथ अपना संबंध न मानने से वो स्वतः कट जाता है, क्योंकि संसार के साथ अपना संबंध है नहीं, केवल माना हुआ है। अतः संसार के साथ अपना संबंध न मानने से उसका छेदन हो जाता है, इसमें साधक को संदेह ही नहीं करना चाहिए। चाहे व्यवहार में ऐसा दिखे चाहे न दिखे, आरंभ में दिखे चाहे न दिखे, जीव ने अपनी भूल से शरीर संसार से संबंध माना था, इसलिए उसका छेदन करने की जिम्मेवारी भी जीव पर ही है। अतः भगवान इसे ही छेदन करने के लिए कह रहे हैं। संसार से संबंध विच्छेद के कुछ उपाय, कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। दूसरा, सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए, संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग करना चाहिए। शरीर संसार से मैं और मेरापन को बिल्कुल हटा लेना चाहिए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता पर दृढ़ता से डटे रहना चाहिए। मुझे एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्मों का तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। 18 का 45। आठवां, बचपन में शरीर पदार्थ परिस्थिति विद्या सामर्थ्य आदि जैसे थे वैसे अब नहीं है, क्योंकि वे सब के सब बदल गए, पर मैं स्वयं वही हूं, बदला नहीं। अपने इस अनुभव को महत्व देना चाहिए। नवा, संसार से माने हुए संबंध का सद्भाव मिटा लेना चाहिए। सद्भाव माने सत्ता भाव, परिशिष्ट भाव। भगवान ने अपने विषय में कहा है कि अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। और सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यंच इवाहम अर्जुन, 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। और यहाँ संसार के विषय में कहते हैं नान्तो नचादिर नथ संप्रतिष्ठा। तात्पर्य है कि भगवान आदि में भी हैं, अंत में भी हैं और मध्य में भी हैं, परंतु संसार न आदि में है न अंत में है और न मध्य में ही है, अर्थात संसार है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, दूसरे का सोड़ा। अतः एक भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इन पदों से आए चित्वा शब्द का अर्थ काटना अथवा नाश करना नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है। कारण कि यह संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है, स्वरूप असंग है। असंगो यहम पुरुष है, स्वरूप से गुण संग नहीं है। गुण संग से ही जन्म मरण होता है। कारणम गुण संगो से सदसद योनि जन्मसु, 13:21। अतः स्वरूप की असंगता का, निर्लिप्तता का, अजरता अमरता का अनुभव करके उसमें स्थित होना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है। संसार राग के कारण दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की सत्ता और महत्ता दिखती है। अगर राग न रहे तो संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। अतः असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा पदों का तात्पर्य है संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अपने अंतःकरण में परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना। वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत उसमें राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं, राग बाधक है। इसलिए अन्य दार्शनिक तो संसार को असत सत आदि अनेक प्रकार से कहते हैं, पर भगवान संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कहते हैं। संबंध विच्छेद करने से संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है। वासुदेव सर्वम्।